ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक 2082 प्रतिनिधि सभा से सर्वसम्मति से पारित। विधेयक से पूर्वाधार के विकास के द्वार खुलेंगे और निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करेगा, अर्थमंत्री पौडेल का विश्वास। प्रतिनिधि सभा के संदेश सहित नेपाल नागरिकता द्वितीय संशोधन विधेयक राष्ट्रीय सभा से पारित। मां के नाम से भी नागरिकता पाने का प्रावधान विधेयक में सुनिश्चित किया गया है, गृहमंत्री लेखक का कथन। शिक्षा समिति की रिपोर्ट सहित विद्यालय शिक्षा विधेयक 2080 प्रतिनिधि सभा में हुआ पेश और श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे सरकारी कोष के दुरुपयोग के आरोप में गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक 2082 पारित किया गया है। बैठक में उप प्रधान एवं अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल द्वारा पेश किए गए वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक 2082 को पारित करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया। विधेयक पर चर्चा के दौरान बैठक में उठे सवालों के जवाब देते हुए उप प्रधान एवं अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल ने कहा कि ये विधेयक पूर्वाधार के विकास में निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करके पूर्वाधार विकास के नए द्वार खोलेगा। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में विद्यालय शिक्षा विधेयक 2080 और भूमि संबंधी कुछ नेपाल आयन को संशोधित करने वाले विधेयक 2082 से संबंधित संसदीय समिति की रिपोर्ट पेश की गई। बैठक में सूचना प्रविधि और साइबर सुरक्षा विधेयक 2082 और राष्ट्रीय खेलकूद विकास पहला संशोधन विधेयक 2082 को दफावार चर्चा के लिए संबंधित समिति में भेजे जाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। इससे पहले बैठक में सांसदों ने नेपाल की सहमति के बिना भारत और चीन के बीच नेपाली भूमि लिपु लेक में सीमा व्यापार करने के लिए किए गए समझौते को अस्वीकार्य बताते हुए इसका विरोध किया था। सांसदों ने कहा कि भारत और चीन के बीच हुई सहमति ने नेपाल की संप्रभुता, स्वाधीनता और भौगोलिक अखंडता पर हमला किया है। उन्होंने राष्ट्रीय हित के पक्ष में तत्काल राजनीतिक और कूटनीतिक पहल करने की सरकार से मांग भी की। सांसदों ने कुछ दिन पहले चीन से आई भीषण बाढ़ से रसुआगढ़ी में हुई क्षति और सीमा क्षेत्र में स्थित तालाबों के जोखिम में होने के मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए नेपाल और चीन के बीच कूटनीतिक पहल के माध्यम से समय पर जोखिम न्यूनीकरण के उपाय करने की मांग भी की। इस बीच राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी ने आज भी प्रतिनिधि सभा की बैठक का बहिष्कार किया। बैठक में श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री शरद सिंह भंडारी ने कहा कि अब तक सामाजिक सुरक्षा कोष में औपचारिक क्षेत्रों से लगभग 6,13,718 श्रमिक दर्ज हो चुके हैं। प्रतिनिधि सभा में आज सांसदों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देते हुए मंत्री भंडारी ने जानकारी दी कि औपचारिक क्षेत्र में 21,392 रोजगारदाताओं का पंजीकरण हो चुका है। मंत्री भंडारी ने बताया कि सभी नेपाली नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा कोष से जोड़ने के उद्देश्य से आगे बढ़ रहे हैं और नागरिक लगानी कोष में सभी को भाग लेना चाहिए। श्रम मंत्री भंडारी ने कहा कि नेपाल ने विदेश में रोजगार के लिए गए श्रमिकों के वेतन, पेंशन, स्वास्थ्य सुरक्षा आदि के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और ILO मानकों के अनुसार द्विपक्षीय समझौतों पर काम आगे बढ़ाया है। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक 13 भाद्र शुक्रवार दोपहर 1 बजे के लिए बुलाई गई है। राष्ट्रीय सभा ने प्रतिनिधि सभा से संदेश सहित प्राप्त नेपाल नागरिकता द्वितीय संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया है। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में गृहमंत्री रमेश लेखक द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयक को सभा ने पारित किया। इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा के दौरान सांसदों के प्रश्नों का जवाब देते हुए गृहमंत्री लेखक ने कहा कि मां के नाम से भी नागरिकता पाने की व्यावहारिक व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। गृहमंत्री लेखक ने कहा कि नेपाल के संविधान के प्रावधानों के अनुरूप किसी भी नागरिक को नागरिकता प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जाएगा, इसी भावना के साथ ये विधेयक लाया गया है। इससे पहले बैठक में सांसदों ने लिपुलेख होते हुए भारत चीन व्यापार समझौते से नेपाल की भूमि पर अतिक्रमण होने का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक माध्यम से इसे रोकने के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। सांसदों ने मध्य प्रदेश में तत्काल पेयजल और सिंचाई की व्यवस्था करने और सुदूर पश्चिम प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसी तरह सांसदों ने लुम्बिनी के बौद्ध पर्यटन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित करने और इस प्रदेश के धार्मिक महत्व वाले स्थलों के निर्माण कार्यक्रम और संरक्षण में निवेश बढ़ाने पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। समाजवादी मोर्चा नेपाल ने कहा है कि भारत और चीन के बीच लिपुलेख को लेकर हुए समझौते से नेपाल की संप्रभुता और अधिकारों पर गंभीर आघात पहुंचा है। मोर्चा ने आज एक प्रेस वक्तव्य जारी करके नेपाल की संप्रभुता और अखंडता पर प्रहार करने वाले इस समझौते का विरोध और असहमति प्रकट की। मोर्चा ने कूटनीतिक पहल के जरिए संबंधित देशों को सही तथ्यों की जानकारी देने, इस समझौते का विरोध करने और नेपाल की भूमि वापस लाने की पहल करने का सरकार से आग्रह किया है। मोर्चा द्वारा जारी वक्तव्य में उल्लेख किया गया है कि भारत और चीन के बीच हाल ही में पुलान गुंजी को जोड़ने वाले लिपुलेख व्यापार मार्ग संचालित करने और द्विपक्षीय व्यापार को फिर से शुरू करने का समझौता हुआ है, जिस पर मोर्चा ने ध्यान आकर्षित किया है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्य आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि लिपुलेख नेपाल की भूमि है। आज पोखरा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री गुरुंग ने कहा कि भारत द्वारा नेपाल की भूमि का उपयोग किए जाने के मुद्दे का समाधान कूटनैतिक माध्यम से किया जाना चाहिए। उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया कि लिपुलेख लिम्पियाधुरा और कालापानी पर नेपाल का स्वामित्व सिद्ध करने के लिए पर्याप्त प्रमाण और तथ्य मौजूद हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि दो देशों के बीच व्यापार के नाम पर इन क्षेत्रों में कॉरिडोर या सड़क निर्माण नहीं किया जा सकता है और इस मसले का हल कूटनीतिक वार्ता के जरिए ही निकाला जाएगा। राष्ट्रीय सभा अंतर्गत विधायन व्यवस्थापन समिति की बैठक में निजामती सेवा में सह सचिव का पद खुला रखने या न रखने के विषय पर सरकार और सांसदों के बीच विवाद होने के कारण बैठक बिना किसी निष्कर्ष के समाप्त हो गई। निजामती विधेयक पर दफावार चर्चा करने के लिए समिति की आज हुई बैठक में सांसदों गोपाल भट्टराय, डॉ विदुराम भूषाल, पद्म बहादुर परियार, आनंद प्रसाद ढोंगाना, डॉ अंजन शाक्य, सुरेश आले मगर, सुमित्रा विसी आदि ने निजामती सेवा में खुले सहसचिव के पद की व्यवस्था करने के लिए विधेयक में संशोधन का प्रस्ताव रखा था। बैठक में संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय के सचिव रवि लाल पंत ने प्रतिनिधि सभा से पारित होकर प्रतिवेदन सहित आय विधेयक की व्यवस्थाओं को ज्यों का त्यों पारित किए जाने की धारणा रखी, जिसके बाद बैठक बिना निष्कर्ष के समाप्त हो गई। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल ने कहा कि संस्कृति और त्यौहार देश की मौलिकता बनाए रखते हैं, इसलिए इसके संरक्षण, संवर्धन और निरंतरता के लिए लगे रहना चाहिए। राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में आज तीज के संदर्भ में आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति पोडेल ने कहा कि नेपाल के संविधान, आईन और नियमावली में महिलाओं से संबंधित कई अधिकारों का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है और अब प्रभावी क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। नए संसद भवन की कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम का आज परीक्षण के दौरान डेमो प्रदर्शन किया गया। नए संसद भवन की कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के बारे में उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाशमान सिंह सहित संघीय संसद के महासचिव, सचिव और सचिवालय के प्रतिनिधियों के बीच नई प्रणाली संचालन के लिए इसका परीक्षण करके दिखाया गया। सिंह दरबार परिसर के भीतर ही बन रहे संसद भवन में विभिन्न देशों में प्रयोग की जा रही आधुनिक प्रणाली ही नेपाल की संसद में प्रयोग की गई है। ये जानकारी शहरी विकास मंत्रालय के सचिव गोपाल सिग्देल ने दी। बारिश शुरू होने के बाद देश में डेंगू का संक्रमण तेजी से बढ़ा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक 74 जिलों में डेंगू फैल चुका है। महामारी नियंत्रण विभाग के अंतर्गत कार्यरत कीटजन्य रोग नियंत्रण शाखा के प्रमुख डॉ गोकर्ण प्रसाद दाहाल के अनुसार अब तक 3,247 लोग डेंगू से संक्रमित पाए गए हैं। पिछले एक सप्ताह में ही 211 नए मामले सामने आए हैं। इसी अवधि में डेंगू के कारण दो लोगों की मौत भी हुई है। मच्छरों से फैलने वाली इस बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों ने स्थानीय प्रशासन और नागरिकों से साफ सफाई और सावधानी बरतने की अपील की है। डेंगू के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के लिए काठमांडू महानगर पालिका ने एक विशेष वॉक एंड एक्ट अभियान शुरू किया है। ये अभियान महानगर के सभी 32 वार्डों में एक साथ चलाया जा रहा है, जिसे प्रत्येक वार्ड में स्थित स्वास्थ्य प्रोत्साहन केंद्रों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग के महामारी रोग रोकथाम और नियंत्रण फोकल पर्सन ऋषि प्रसाद भूषाल के अनुसार इस अभियान के तहत मच्छरों के प्रजनन स्थलों को नष्ट करने, फॉगिंग करने, माइकिंग करने, नागरिकों को जागरूक करने लगातार कार्य किए जा रहे हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को सरकारी पैसों के कथित दुरुपयोग के मामले में गिरफ्तार किया गया है, ये जानकारी वहां की पुलिस ने दी है। उन पर लगा ये आरोप राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उनकी विदेश यात्राओं से जुड़ा हुआ है। उन पर आरोप है कि साल 2023 में न्यूयॉर्क में हुई संयुक्त राष्ट्र आम सभा से लौटते हुए वो सरकारी खर्च पर अपने निजी काम से अपनी पत्नी के साथ लंदन रुके थे। उन्हें आज राजधानी कोलंबो की मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया जाना है। इससे पहले उन्होंने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट CID को बयान दे दिया है। रानिल विक्रमसिंघे ने खुद पर लगे आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि लंदन में उन्होंने कई बैठकों में शिरकत की थी। विक्रमसिंघे सन 2022 से 2024 तक श्रीलंका के राष्ट्रपति रहे थे। उन्होंने ये पद तब संभाला था जब आर्थिक संकट के कारण देश में व्यापक प्रदर्शन हुए थे और उनके पूर्ववर्ती गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर चले गए थे। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक 2082 प्रतिनिधि सभा से सर्वसम्मति से पारित। विधेयक से पूर्वाधार के विकास के द्वार खुलेंगे और निजी क्षेत्र के निवेश को आकर्षित करेगा, अर्थमंत्री पौडेल का विश्वास। प्रतिनिधि सभा के संदेश सहित नेपाल नागरिकता द्वितीय संशोधन विधेयक राष्ट्रीय सभा से पारित। मां के नाम से भी नागरिकता पाने का प्रावधान विधेयक में सुनिश्चित किया गया है, गृहमंत्री लेखक का कथन। शिक्षा समिति की रिपोर्ट सहित विद्यालय शिक्षा विधेयक 2080 प्रतिनिधि सभा में हुआ पेश। और श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे सरकारी कोष के दुरुपयोग के आरोप में गिरफ्तार। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।